शांति, ओम शांति। आप सभी भाई बहने यहाँ ज्ञान सरोवर में योग तपस्या भट्टी में ही पधारे हैं, तो योग तो कर ही रहे हैं और योग की स्टेजेस का भी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इसको और थोड़ा सा हम अधिक स्पष्ट रूप से जानेंगे। ऐसे तो हम राज योगी हैं, राज योगी माना ही जो अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करे, यानी देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल बाबा को याद करना है। ये राजयोग की विधि है। इससे पहले भक्ति में हम याद करते आए देहधारी देवताओं को, गुरुओं को, या जो भी हमारे इष्ट थे, और अपने को भी देह ही समझते थे, तो भगवान से कभी हमारा संबंध हुआ नहीं। लेकिन जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें स्वयं का सत्य परिचय देते हैं कि शिव बाबा या भगवान कोई देहधारी नहीं है, वो तो सदा विदेही है, विचित्र है, देह से न्यारा है। और इसीलिए हमें उसे याद कैसे करना है, देहधारी समझकर याद नहीं करना है, स्वयं को भी देहधारी नहीं समझना है। और अगर हम स्वयं को देह से न्यारा नहीं कर पाए तो बाबा से हमारा योग लगेगा नहीं। तो ये पहली स्टेज है राजयोग की। पहली स्टेज क्या है? आत्म चिंतन करके स्वयं को आत्मस्मृति में स्थित करना, यानी स्वयं को भी देह से न्यारे निराकार स्थिति में स्थित करना। तभी शिव बाबा के साथ हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होती है, क्योंकि वो तो सदा ही निराकार है और हम तो देह में हैं, आत्मा तो देह में है, और जन्मों से देह में है, तो देह अभिमान बहुत पक्का है। तो भले ही बाबा ने हमें ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी इतना जल्दी देह अभिमान छूटता नहीं है। तो हम कई बार ये गलती करते हैं योग में कि जो भक्ति में आदत पड़ी हुई है देह समझकर याद करने की, अभी भी योग में बाबा को वैसे ही याद करते हैं, फिर शिकायत क्या होती है? योग लगता नहीं, बुद्धि भटक जाती है, क्यों पावरफुल याद का अनुभव नहीं होता, क्यों बाबा के प्यार का अनुभव नहीं होता। तो ये शिकायत, क्योंकि हम सही विधि से जो हमें योग करना चाहिए वो विधि से हमें सिद्धि नहीं मिल रही, तो ये हमें चेकिंग करनी है कि हमारी फर्स्ट स्टेज कितनी पावरफुल है। अशरीरी बनने का अभ्यास हमारा लगभग निरंतर होना चाहिए। सारे दिन में हम जब कर्म भी कर रहे हैं तो भी बीच बीच में हमारी ये प्रैक्टिस, जिसको बाबा कहता है कि एक मिनट या दो मिनट भी अशरीरी हो जाऊं, तो फिर जब भी हम योग में बैठेंगे तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे एक तैयारी होती है, पूर्व तैयारी, मानो एरोप्लेन को उड़ान भरनी है तो फिर पूरी तैयारी के साथ ही एरोप्लेन उड़ता है ना, उसके में जो भी स्टाफ है वो देखता है इसका फ्यूल पूरा है या नहीं, माना पेट्रोल जिस तरह का पेट्रोल एरोप्लेन में होना चाहिए वो पूरा भरा है, खाने का प्रबंध है, पानी का प्रबंध है, क्योंकि आसमान में तो फिर कुछ भी हो नहीं सकता है। तो जब पूरी तैयारी होती है तभी वो जमीन छोड़ता है। ऐसे ही ये देह रूपी धरती को छोड़ना है हमें, तो हमारी भी तैयारी चाहिए। अगर तैयारी नहीं है तो हम देह रूपी धरती को छोड़ ही नहीं पाते हैं, फिर तैयारी ही करते रहते हैं। योग में बैठ करके भी कैसे योग करते हैं, क्योंकि सारे दिन के कोई ना कोई प्रभाव हमारे मन पर होते हैं। अब हम कर्म करते हैं और व्यवहार में आते हैं, है ना, और जो भी हमारी समस्याएं हैं उसमें भी हम रहते हैं, तो मन खाली तो नहीं होता है। तो योग में बैठे तो मन खाली होता है, वैसे मन बिजी है, लेकिन योग में बैठते ही सारी बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी जो काम में याद नहीं आ रही हैं, क्योंकि काम में बुद्धि लगी हुई है। तो योग में बैठते ही 10 मिनट 15 मिनट तो ये हुआ, इसने ये किया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या नहीं तो फिर बंधन होते हैं हमारे, वो बोझ हमें नीचे रखता है, ऊपर नहीं जाने देता, क्योंकि बोझ होगा तो बुद्धि पर बोझ होगा तो बुद्धि उड़ नहीं सकती है, तो हम अशरीरी नहीं बन पाते हैं। तो क्या क्या बोझ होते हैं हमारे मन पर, कोई लगाव चुकाव है किसी के साथ तो वो आत्मा खींचती है बुद्धि को, या लगाव झुकाव नहीं है किसी के साथ, हिसाब किताब है ना, दोनों तरह से ही बुद्धि पर बोझ आता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लगाव चुकाव जो है वो स्नेह का है, और हिसाब किताब है वो किसी से हमारा संस्कार नहीं मिलता है, या जो भी उनके साथ हमारा कोई कर्म बंधन है, तो वो हमें बाबा के पास उड़ने नहीं देता, या फिर कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प विकल्प अपनी ही समस्याओं को लेकर के। तो कितना ही समय हम इसमें ही उलझे रहते हैं, और फिर हम योग में बैठे, माना आधा घंटा हमें टाइम है, आधा घंटा हमने योग लगाया, अभी भट्टी में आए हैं तो अलग है, अभी तो हम सब बातों से फ्री हैं, तो यहाँ की अनुभूति और जब हम अपने स्थानों पर हैं उस अनुभूति में फर्क हो जाता है। तो वहां आप आधा घंटा टाइम निकाल के बैठे तो आधे घंटे में से पौना टाइम तो किस में निकल गया, तैयारी करने में ही निकल गया। फिर 10 मिनट योग लगा तो क्या योग लगा, बाबा से रू रिहान, फिर बाबा को हम सुनाने लगेंगे, बाबा ये है वो है, जो भी अपने दिल की बात हमें करनी है। रू रिहान का मतलब क्या, यही कि बाबा से हम कोई संबंध को लेकर के रू रिहान कर रहे हैं, अपने दिल को हल्का कर रहे हैं, बाबा की मदद हमें मिल जाएगी और योग का टाइम पूरा हो गया। तो ज्यादातर हम इसी लेवल पे रह जाते हैं। अमृत वेला भी बहुत पावरफुल योग हम कर पाए, जो भी हमारी योग की सारी स्टेजेस हैं उन तक हम पहुंच पाए, कम होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन वो भी कम होता है। उसमें अमृत वेले भी हम नीचे ही नीचे रह जाते हैं, बस तैयारी तैयारी करते रहते हैं। तो ऐसा योग जो है वो हमारे विकर्म विनाश नहीं करता, या वो हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं करता, इसको हम साधारण योग कहते हैं। साधारण योग तो हम कर्म योग के समय भी करते हैं, हम सभी कर्म योगी हैं और सहज राजयोगी हैं। तो सहज राजयोगी का मतलब क्या है, तो बाबा ने यही कहा कि कोई आपको कठिन आसन नहीं लगाना है, कोई कठिन मंत्रों का जाप नहीं करना है, कोई कठिन साधना नहीं करनी है, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जो भी हम अपने कर्म कर रहे हैं, वो कर्म करते हुए भी बाबा की याद बनी रहे। हाँ, लेकिन वो भी पावरफुल याद तो नहीं हो पाती, क्योंकि आदि बुद्धि तो कर्म में लगी रहती है, कर्म में भी तो बुद्धि लगानी पड़ती है ना, पर हो सकता है कि कोई कर्मों में सारा समय बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, थोड़ा समय लगाते हैं, फिर थोड़ा समय हम बाबा को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हम अभ्यस्त होते हैं। तो इसीलिए साधारण योग हम बीच बीच में उसका अनुभव हम करते रहते हैं, लेकिन ये योग परिवर्तन करने वाला योग नहीं है, पावन बनाने वाला योग नहीं है, और इसीलिए बहुत सालों से हम बीखे हैं, 10 साल से हम बीखे हैं, 20 साल से हम बीखे हैं, लेकिन संस्कार वहीं के वहीं हैं, हाँ फिर सोचते भी हैं, रोज मुरली सुनते हैं, रोज अमृत वेला करते हैं, योग करते हैं, कमी तो कोई भी नहीं है। भोजन भी हम रोज बाबा की याद में बना हुआ ही ब्रह्मा भोजन खाते हैं। यानी हमारी जो दिनचर्या है वो बाबा के अनुसार ही चलती है, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं होता है? चलो थोड़ा समय दब जाते हैं हमारे संस्कार, लेकिन जब परिस्थितियों का पानी मिलता है ना, वैसे तो हम शांति हैं, बाबा के बच्चे हैं और भी हमारी शांति की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन कोई गुस्सा दिलाने वाली बात आ गई, फिर भी मैं उतना ही शांत रहूं, तब कहेंगे ना मैंने अपने गुस्से रूपी संस्कार पर विजय पाई। तो क्या उस समय चलो मैं चुप तो रह गई, पर क्या मेरे मन में भी गुस्सा नहीं आया? तो फिर हम कहेंगे कि हमने उसको जीता। लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी जो बीके भाई बहने हैं, नंबरवार तो हैं पर मेजॉरिटी भाई बहनों को हाथ उठवाते हैं तो हमने अपने संस्कार को जीत लिया है। कितने हाथ उठाते हैं? दो चार छह। अभी भी मैं उठवाऊंगी तो कोई समझते हैं हमारी 100% क्रोध पर विजय? मन में भी गुस्सा नहीं आता, मुख से नहीं बोलते लेकिन मन से भी नहीं बोलते, नहीं तो अंदर अंदर मन से बोलते रहते हैं। उठा सकते हैं हाथ? तो देखो एक दो, अब 500 में से दो। तो इसका मतलब हमारे योग की जो स्टेज है, जो बाबा हमसे चाहते हैं, वो वाली स्टेज तक हम पहुंचते ही नहीं है, जो हमारे संस्कार ही दैवी संस्कार हो जाए, हमारे संस्कार ही ईश्वरीय संस्कार हो जाए, पुराने संस्कार हमसे पूरी तरह से विदाई ले लें। तो बाबा ने विधि बताई थी एक मुरली में, अशरीरी बनने की सहज विधि है, चार बातें याद रखो, प्रीत, मीत, गीत और रीत। प्रीत मीत प्रीत मीत गीत और रीत, ये चार बातें याद रखना है। तो पहले प्रीत, बाबा से हमारा स्नेह। तो जो बहुत समय के बाद हमें कोई मिलता है, आज बाबा हमें 5000 साल के बाद मिले हैं, दुनिया में भी कोई हमें इतने समय के बाद मिले तो कैसे मिलते हैं हम, कितना स्नेह होता है उससे। मानो कोई 10 साल बाद आपका फ्रेंड मिला, आप बचपन में साथ में पढ़े, साथ में खेले, हाँ फिर अलग हो गए, वो दूसरे शहर में, आप दूसरे शहर में, और फिर आपको मिले तो कैसे मिलते हैं, भूल ही जाते हैं, आपस में दीन दुनिया भी खोई है, बातों में प्यार में इतने मगन कि आसपास का सब भान ही पूरा खत्म हो जाता है। तो बाबा भी हमें ऐसे मिला है अभी, और फिर बाबा का प्यार, जो भगवान का प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, वो कोई मनुष्य का प्यार है आज के समय में? इंसान का तो स्वार्थ का प्यार है ना, जब तक आपसे स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक आपसे प्यार है, और जब स्वार्थ पूरा हुआ तो प्यार भी खत्म। तो ऐसा स्नेह बाबा के साथ अनुभव करना, और स्नेह के साथ संबंध भी है और प्राप्ति भी है, सर्व संबंध है हमारे बाबा के साथ। तो जितने संबंध का अनुभव उतना प्यार बढ़ता है। तो हम कितना संबंध बाबा से अनुभव करते हैं ना, एक तो हमें है कि दिमाग से ज्ञान है कि बाबा से सर्व संबंध है, और एक है कि हम सचमुच वो संबंधों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। फिर संबंधों के साथ साथ हमें प्राप्तियां, कितना बाबा ने हमें बेहद की प्राप्तियां कराई हैं, है ना, दुनिया की प्राप्तियां तो हद की प्राप्ति है, लेकिन बाबा ने जो हमें प्राप्ति कराई वो कौन सी है, इस जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की प्रालब्ध भाग्य। और बाबा कहते हैं पूरे कल्प चलने वाला है, दो युग की तो गारंटी है बाबा की। आज भी मुरली थी ना कि हम कौन है, हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्माएं हैं। तो बाबा ने हमें कितना हाईएस्ट और होलीएस्ट बनाया है, और उसके साथ रिचेस्ट भी हैं, केवल हाईएस्ट होलीएस्ट नहीं है, लेकिन हम ही बाबा के, इसीलिए बाबा कहते हैं आपके कदम में पदम है, इतना दुनिया में कोई कमाई करवा सकता है कि एक कदम उठाए और पद्मों की कमाई हो जाए। तो वो याद करते हुए जब हम बाबा को याद करेंगे तो कहां हम अपने आप को भूल जाएंगे हमें भी पता नहीं चलेगा। तो पहली विधि है कि बाबा के साथ प्रीत का अनुभव, जो आज भी बाबा ने कहा कि लव में लीन हो गए, बाबा के लव में लीन होना है ना, तो भान ही नहीं है। फिर दूसरा बाबा ने कहा मीत का अनुभव करना, क्योंकि बाबा से सर्व संबंधों से जो प्राप्तियां हुई हैं वो दुनिया में संबंधों से हमें नहीं हो सकती। सर्व संबंधों में बाबा माता पिता के रूप में हमारी पालना कर रहे हैं, सर्व खजानों के हमें मालिक बनाया है, हम बालक सो मालिक बाबा के बच्चे हैं, और फिर हमें योग्य भी बना रहे हैं, जैसे माँ बाप बच्चों को योग्य बनाते हैं, तो बाबा भी हमें सतयुग के जाने के योग्य यानी सर्व गुण संपन्न बना रहे हैं, पढ़ाई के द्वारा सर्व शक्तियों से संपन्न बना रहे हैं। तो इसको स्मृति में लाना कि उस संबंध से मुझे क्या भाग्य मिला है, क्या प्राप्ति हुई है। तो एक है कि हमें पता है ना, ऐसे हम सोचते हैं बाबा मेरा है और बाबा से मेरे सर्व संबंध हैं, ये तो हमें मालूम है। तो ज्ञान होना अलग स्टेज है, लेकिन स्मृति स्वरूप बनना वो एक अलग स्टेज है। बाबा कहता है कि जैसे जो नशे वाले होते हैं ना, तो नशे वाले अगर बोतल में शराब भरी हुई रखी है उससे नशा चढ़ेगा, जो भी नशा है वो वैसे ही रखा है तो चढ़ेगा, उसको पीना पड़ेगा ना, शराब को पिएंगे तब उसका नशा चढ़ता है। तो यहां भी मिला है सब कुछ, सारा खजाना आपके बैंक में बहुत पैसा पड़ा है, आप यूज ही नहीं करोगे तो आपको फायदा है उसका, ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, आप चले जाओगे, आपके बाल बच्चे पोते पोतियां ही यूज करेंगे उसको, आपने तो उसका सुख लिया नहीं, ऐसे ही कहेंगे ना। तो ऐसे ही हमारे खजाने हैं, बाबा ने तो दे दिए, हमें पता है, लेकिन अब हम यूज ही नहीं कर रहे उसको। तो अगर हम स्मृति स्वरूप नहीं बन रहे तो वो नशा नहीं चढ़ेगा हमको, वो बाबा की जो याद, अगर हमने वो स्मृति लाई तो ही वो याद हमारी है ना बाबा। इसलिए हमें कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनना, ये भी बाबा को याद करना है। तो ये हम याद कर रहे हैं माना अपनी प्राप्तियों को, और जो बाबा ने हमें प्राप्तियां कराई उनको हम स्मृति में ला रहे हैं। तो योग के समय ये नेक्स्ट स्टेज है कि हम बाबा के साथ हैं और सर्व संबंधों की वो अनुभूति, ये बाबा हमें कैसे कराते हैं। फिर बाबा ही हमारा जो शिक्षक है, वो ऐसा शिक्षक है कि वो कोई दिन छुट्टी नहीं करता, हम भले ही कर लें लेकिन पढ़ाने वाला कभी छुट्टी नहीं करता, और कभी थकता भी नहीं है कि आज मेरा सिर दर्द है या आज कोई बहाना देता है। बाबा रोज मुरली चलती है हमारे लिए और रोज बाबा हमें याद प्यार देते हैं। तो हमें कैसे स्टूडेंट होना चाहिए, रेगुलर और पंचुअल, जैसे बाबा रेगुलर और पंचुअल है ऐसे हमें भी बाबा के ऐसे स्टूडेंट। तो वो पढ़ाई जो हमें तीनों लोकों का मालिक बनाने वाली है, त्रिकालदर्शी बनाने वाली है, त्रिनेत्री बनाने वाली है, बाबा कहते इससे बड़ी डिग्री कोई होती नहीं दुनिया में। लोगों को बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, कोई डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल भी लेते हैं ना, ट्रिपल एमए कर लेंगे, डबल एमए कर लेंगे, लेकिन जो बाबा की डिग्री बाबा हमें देते हैं वो दुनिया में कोई भी और कितने भी बड़े शास्त्रवादी क्यों ना हो, उनको भी ये ज्ञान नहीं हो सकता। कितने भी बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, उनको भी ये ज्ञान नहीं हो सकता। कितने भी बड़े पॉलिटिशियंस क्यों ना हो, और इसीलिए बाबा कहता है जो आपके टाइटल हैं दुनिया में और किसी को भी ये टाइटल नहीं हो सकते है ना। तो ये ऐसी डिग्री किसी को दुनिया में मिल नहीं सकती, तो भले हमको वो लिखत में डिग्री नहीं मिलती है लेकिन मिली है कि नहीं मिली है। तो उस पढ़ाई की महिमा को स्मृति में लाना, और पढ़ाने वाला कौन, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है। इस नशे से उस पढ़ाई को पढ़ना, तो वो हमारा उस समय योग लगा हुआ ही है अगर हमने इस स्मृति से पढ़ाई पढ़ी। फिर बाबा के साथ, बाबा हमारा खुदा दोस्त है, दोस्त है तो दोस्त से हम सब दिल की बातें करते हैं, है ना, वो हम करते ही हैं। यही हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि बाबा से हम कोई भी बात कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। दुनिया वालों में हम सब संबंधों में कभी भी कोई भी बात कर लें संभव नहीं, हमको उसका मूड देखना पड़ता है, ये अभी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, अगर सुनेगा तो क्या रिएक्ट करेगा, तो सब सोचना पड़ता है। फिर सुना दें, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं दूसरे को सुना दिया तो हाँ तो मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी। ऐसे भी होता है ना कि हम सबको सब बात नहीं सुना सकते, बहुत पर्सनल बातें होती हैं जो कोई बच्चे माँ बाप को भी नहीं सुना सकते, यहाँ तक कि फिर दोस्तों को भी नहीं सुना सकते। कई बातें होती हैं माँ बाप को सुना लो, लेकिन माँ बाप को नहीं सुनाओ लेकिन दोस्त को सुना देते हैं। पर कुछ बातें इतनी पर्सनल होती हैं कि दोस्त को भी नहीं सुना सकते, तो फिर किसको सुना सकते हैं, बाबा को। और बाबा चुपचाप सुनेंगे, है ना, उससे ज्यादा फेथफुल कोई भी नहीं है। तो इसीलिए हमारे जो दिल की लेन देन है वो बाबा के साथ ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई एक साथी तो हो, है ना। भले बाबा के साथ सर्व संबंध है लेकिन शिव बाबा तो निराकार है या ब्रह्मा बाबा तो आकारी है, तो यहाँ साकार में भी कोई साथी चाहिए चाहिए जिससे हम थोड़ा दिल का हाल, क्योंकि बाबा को सुनाते हैं तो योग ही नहीं लगता है, पता नहीं बाबा सुनता है कि नहीं सुनता है। जब उलझन में होते हैं ना, प्रॉब्लम में होते हैं, तो आधी हालत तो ये है कि योग ही नहीं लग रहा है, फिर योग लगा भी तो पता नहीं बाबा ने तो जवाब दिया नहीं, तो अब क्या हुआ पता नहीं, बात पहुंची कि नहीं पहुंची, तो कोई टचिंग तो हुई नहीं, क्या कहेंगे। तो कोई तो साकार में हो जिससे दिल हल्का कर लें, तो कोई साथी सखी जो भी बोलो क्या कहेंगे, हाँ जो समझते हैं होना चाहिए, कोई एक तो होना चाहिए अपना जिसको हम अपना कहें। हाथ नहीं उठा रहे कोई भी, जो समझते नहीं बाबा ही सब कुछ है, बाबा को ही सुनाना है। अच्छा, वो भी सब नहीं उठा रहे हैं, बाकी बीच में दुविधा में है इधर या उधर। तो बाबा ने हमेशा कहा है कि अगर बाबा से हमारी सच्ची दिल का संबंध है, प्यार है, तो निराकार आकार होते हुए भी बाबा हमें साकार जैसी ही अनुभूति कराते। जब भक्तों को भी भगवान करा सकता है अनुभव, तो हम तो डायरेक्ट बाबा के बच्चे हैं। सुने हैं ना, जो भी सच्चे भक्त हुए उनके कितने वंडरफुल अनुभव हैं, जब वो जिन्होंने ऐसी भक्ति की जिसको नौदा भक्ति कहता है बाबा, तो जब उनके अनुभव हुए तो क्या हमको बाबा अनुभव नहीं कराएगा। लेकिन इतना निश्चय हो बाबा में कि जब थोड़ा परीक्षा का टाइम आए तो भी हम हिले नहीं, अगर हम अचल अटल हैं, तो बाबा हमें वो अनुभव या खुद नहीं तो किसी को निमित्त बना देगा और इस तरह से हमें उससे पार कर देगा कि हमें खुद को भी नहीं पता चलेगा कि कोई परिस्थिति भी आई क्या। ऐसे कई बाबा के बच्चों को भी अनुभव होते हैं, माना जो बिल्कुल जिनको बाबा पर ये निश्चय कि एक बाबा दूसरा ना कोई, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा के सिवाय हमें किसी का किसी को सहारा नहीं बनाना है। अगर हम किसी इंसान को सहारा बनाने जाएंगे तो फिर बाबा किनारे हो जाता है, क्योंकि बाबा को पता है कि आपने किसी को सहारा बना लिया तो फिर ठीक है, इसके सहारे से इसकी शक्ति से आपका काम चलता है, लेकिन उससे नुकसान क्या होता है, सहारा तो मिलता है, ऐसे नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन कर्म बंधन बना लिया हमने, उस आत्मा के साथ लेन देन किया तो फिर कर्मातीत बनने की बजाय, हिसाब किताब खत्म करने की बजाय हिसाब किताब जोड़ लिया, तो फिर कोई भी मुश्किल आएगी तो पहले बाबा की बजाय वो आत्मा ही याद आने वाली है। फिर बाबा से योग में जो हमें शक्तियों का, प्यार का, प्राप्तियों का अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि बाबा से हमारा पूरी लाइन क्लियर है ही नहीं, उसमें बीच में कौन आ गया, माया किसी व्यक्ति के रूप में आ गई, ये रॉयल माया है, इसको बाबा रॉयल माया नाम देता है कि वैसे तो हमारे सर्व संबंध बाबा के साथ हैं, लेकिन ये टाइम पर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं रॉयल माया बाबा से हमारा बुद्धि का योग तोड़ देती, इसीलिए कभी भी कुछ भी हो एक बाबा ही मेरे मन का मीत है। जो बताया कि मीत कौन है, सदा बाबा ही मेरा मीत है, सर्व संबंध बाबा से। और जो संबंध की कमी है, भाई के कमी है, बेटे की कमी है, या दोस्त, जो भी संबंध हम समझते हैं इस दुनिया में हमारा कम है या उससे हम असंतुष्ट हैं, बाबा के साथ जोड़ लो, बाबा जरूर वो अनुभव कराएगा। बाबा बंधा हुआ है, बाबा ने तो कहा है बस आप दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा हाजिर है, वो हाजरा हुजूर है और कभी भी कहीं भी। तो ये मीत का अनुभव। और फिर गीत, गीत माना उसकी महिमा के गीत गाना, उसके गुण क्या हैं, उनकी महिमा और अपनी महिमा बाबा ने हमें बताई है। तो बाबा की महिमा क्या है, बाबा शिव बाबा क्या है, गुणों में सागर के समान है। तो सर्व गुण जो बाबा के हैं, सर्व खजाने जो बाबा के हैं, उनकी महिमा हम मन ही मन करें। योग दुनिया में भक्ति में लोग कीर्तन करते हैं, तो वो कीर्तन करते हैं, साज बजाते हैं जोर जोर से, आप क्या हो, दुख करता हो, सुख करता हो, आप करुणा निधान हो, आप क्षमा के सागर हो, ऐसे ऐसे गाते हैं ना कीर्तन में जो भी करते हैं, आप विषय विकार मिटाने वाले हो, ये सब वो गाते हैं। भक्त भी गाते हैं लेकिन बोल बोल कर गाते हैं। हमें भी बाबा की महिमा करनी है कि बाबा क्या है और हमारे लिए क्या लेकर आया है, लेकिन कैसे करनी है, मन ही मन, मन ही मन, जो हम मनन करते हैं उसको ही मेडिटेशन ना, वो नेक्स्ट स्टेज है कि स्टेज ऑफ मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, कि बाबा के गुणों का मनन करना और अनुभव करना, केवल रटना नहीं। वो मंत्र रटते हैं वो मतलब नहीं है, हमारा मंत्र क्या है, यही मंत्र है, ये जो शुद्ध संकल्प है बाबा के ने जो हमें दिए। बाबा सर्वशक्तिमान है, ज्ञान के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। मैं आत्मा कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, मास्टर प्यार का सागर हूँ। तो मंत्र जैसे रटना नहीं, लेकिन अनुभव करना उसको। तो वो लोग सिर्फ रटते हैं, या नाम भी जपते हैं तो रटते हैं, उसके अनुभव में नहीं जा पाते, लेकिन हम उसकी अनुभूति में जाते हैं तो वो स्वरूप बनता है हमारा, और वही गुण फिर हमारे स्वरूप में आने लगते हैं। इसको ही कहते हैं ईश्वरीय संस्कार, यानी जो बाबा के गुण वो मेरे गुण, जो बाबा का स्वभाव वो मेरा स्वभाव। बाबा रहम दिल है, बाबा सदा दाता है, बाबा सदा कल्याणकारी है, तो मैं कौन हूं, मैं आत्मा भी रहम दिल हूं, मैं भी उनके समान कल्याणकारी हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। बाबा तो अपने से भी आगे रखते हैं महिमा में, अपने से भी आगे रखते हैं कि बच्चे मेरे से भी आगे हैं और मेरे से भी डबल पूजे हैं। तो उसको स्वीकार करते हुए, बाबा की महिमा को अनुभव करते हुए, हम सहज ही इस देह और देह की दुनिया को भूल जाते हैं। और फिर चौथा है रीत। रीत माना विधि। तो जो विधि बाबा ने हमें बताई है, इस विधि के आधार पर बाबा कहते हैं एक सेकंड में हम अभी अभी यहां हैं और अभी अभी हम परम धाम में पहुंच सकते हैं। कितना समय लगता है परम धाम में पहुंचने में, एक सेकंड ना। परम धाम बोलेंगे तो भी टाइम लगेगा, लेकिन मन से पहुंचने में एक सेकंड में मैं परम धाम में हूं। तो एकाग्रता हो हमारी, वो तब होगी जब जितना समय मैं जो स्थिति बनाना चाहूं, जितना समय मैं परम धाम में रहना चाहूं, उतना समय मैं रह सकूं। ये योग की एकाग्रता है, मन की एकाग्रता है, यानी मेरे संकल्पों पर मेरा फुल कंट्रोल है। अगर मैं आधा घंटा परम धाम में बाबा के साथ हूँ, बीज रूप स्थिति कहते ना हमें, क्योंकि परम धाम में तो शरीर नहीं जाएगा, परम धाम में कौन जाएगा, आत्मा ही जाएगी ना। तो शिव बाबा तो है ही अशरीरी, लेकिन मैं आत्मा भी अपनी बीज रूप स्थिति माना, आत्मा की जो अनादि स्थिति है, जो संपूर्ण स्थिति है, हम परम धाम में बिना पवित्र हुए नहीं जा सकते। वापस घर जाएंगे तो कौन सी अवस्था में जाएंगे, जिस अवस्था में आत्मा इस शरीर में, इस दुनिया में आई, उसी अवस्था में फिर से हमें संपूर्ण बनकर परम धाम जाना है। तो परम धाम में मैं याद कर रही हूं तो मेरी संपूर्ण स्थिति को ही मुझे स्मृति में लाना है। मैं अनादि आदि श्रेष्ठ संपूर्ण पवित्र सर्वगुण संपन्न सर्वशक्ति संपन्न आत्मा, तो ये मेरी बीज रूप स्थिति है। और बाबा के साथ हूं मैं परम धाम में, तो बाबा के साथ हूं तो फिर संग का रंग, बाबा के संग का रंग मुझे लगेगा, संग में हूं वहां पर। तो यहां एकाग्रता में धीरे धीरे कौन सी स्थिति होने लगती है, पहले हम बाबा के साथ संबंधों का अनुभव कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, तो चिंतन चल रहा है, लेकिन एकाग्रता में हमारा चिंतन खत्म होकर के निसंकल्प स्थिति होते हुए अनुभूति होने लगती है। बहुत संकल्प नहीं चलते, इसीलिए हम एक संकल्प में स्थित हो सकते हैं। एकाग्रता माना एक शुद्ध संकल्प में मन स्थित हो जाए। तो बाबा के साथ हूं माना सिर्फ बाबा के साथ हूं, उसके अलावा और कोई संकल्प नहीं। तो इसको ही लीन अवस्था कहा, जो कहा ना दुन भक्ति में कह दिया विलीन हो जाती है आत्मा, लेकिन बाबा कितने विलीन नहीं होती है, लेकिन भगवान की याद में समा जाती है, या लव में लीन हो जाती है, या लगन में मगन हो जाती है। जैसे महाभारत में हम उदाहरण सुनते ना, जो अर्जुन की तीर चलाने की क्षमता थी है ना, तो क्या थी वो, लक्ष्य की एकाग्रता, वो सर्वश्रेष्ठ थी। एक बार उसने फोकस कर लिया फिर उसका ध्यान हिलेगा नहीं। जब गुरु द्रोणाचार्य सिखा रहे थे, दोनों को ही सिखा रहे थे, कौरवों पांडवों को, तो फिर बीच बीच में वो टेस्ट भी लेते थे कि ये कितना सीख रहे हैं। तो एक बार उन्होंने क्या किया, एक पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया बनाकर रखी और कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है। तो फिर सबको बुलाया, पहले युधिष्ठर को बोला, पर कहा गुरु ने कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना फिर तीर चलाना, तुमको क्या दिख रहा है। तो कहा गुरु जी सब दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, पत्ते भी दिख रहे हैं, चिड़िया भी दिख रही है, चिड़िया की आंख भी दिख रही है। तो गुरु ने कहा तुमसे निशाना नहीं लगेगा, तुम छोड़ दो। फिर दुर्योधन को बुलाया, उसको भी पूछा पहले मुझे बताओ तुम्हें दिख क्या रहा है। उसने भी वही जवाब दिया, गुरु जी सब दिख रहा है। तो उसने कहा तुम भी हट जाओ। फिर भीम की बारी आई तो भीम ने भी वही बोला कि गुरु जी चिड़िया भी दिख रही है तो पेड़ भी दिख रहा है। तो कहा तुमसे भी निशाना नहीं लगेगा। अब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से भी यही सवाल पूछा, अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने कहा गुरुजी मैं तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख देख रहा हूं। तो फिर गुरु ने कहा तुम तीर चलाओ, और उसने तीर चलाया और वो सीधा चिड़िया की आंख पर लगा। तो लक्ष्य पर नजर, तो हमारा लक्ष्य कौन है, हमारा लक्ष्य कौन है, बाबा। तो हमारा तीसरा नेत्र, अब ये नेत्रों से तो हम बाबा को नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे तीसरे नेत्र की नजर कहाँ होनी चाहिए, पूरी तरह से मन बुद्धि शिव बाबा पर ही एकाग्र हो, उसके अलावा कहीं बुद्धि न जाए। नहीं तो होता है एक मिनट परम धाम में, दूसरे मिनट नीचे, ये एक्सरसाइज ही करते रहते हैं। भले बाबा हमें कहते हैं रूहानी ड्रिल करो, लेकिन फिर उसको एकाग्रता नहीं कहेंगे। एकाग्रता माना जितना समय मैं परम धाम में चाहती हूँ उतना ही समय मैं बाबा के साथ हूँ और अपनी बीज रूप अवस्था में हूँ, जो सबसे पावरफुल स्टेज है योग की, जिसको हम शक्तिशाली योग कहते हैं या ज्वालामुखी योग कहते हैं, इसको बाबा योग अग्नि कहता है। तो लगन में मगन होना माना ही योग अग्नि प्रज्वलित करना, और इससे ही हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, आत्मा पवन होती है, हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और यही याद, बिंदु रूप की जो स्थिति है वो ही हमारी कमाई में बिंदु बिंदु लगा के कमाई को बढ़ाने वाली है। याद की भी कमाई कहता है ना बाबा। और इस याद से ही हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं, और हिसाब किताब चुकते होते हैं, तो कोई भी ऐसी बीमारियां भी होती हैं, इवन शरीर की भी बीमारियां होती हैं, वो भी सूली से कांटा अनुभव होना, जिसको बाबा कहता है कि कर्म योग वाली वो स्थिति से हम अपने कर्म भोग को भी बहुत हल्का कर लेते हैं, ये इस योग से हमें वो रिजल्ट का अनुभव होता है। तो अभी आपने पूरा क्लास सुना योग के प्रयोग, तो तब हम वो प्रयोग कर पाते हैं, नहीं तो फिर योग हमारा काम ही, और वो जैसे बीरबल की खिचड़ी वाली बात बताते हैं ना, खिचड़ी पका रहा है, नीचे आग जलती, इतनी दूरी पर आग जला रखी है, उसका सेक ही नहीं पहुंच रहा, अब दिनों हो गए खिचड़ी नहीं पकी, तो अकबर पूछता है क्यों खिचड़ी नहीं पक रही है। हाँ, तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, फिर हम क्यों क्या में जाने लगते हैं, क्यों बाबा मदद नहीं कर रहा, क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों वैसा नहीं हो रहा, अब क्यों नहीं हो रहा, तो योग की अग्नि बुझी हुई है। तो अग्नि लगी हुई नहीं है तो कैसे होगा, तो विधि चाहिए ना। तो जब तक वो रीत हमने पूरी नहीं निभाई है जो रीत होनी चाहिए, तब तक हमारे को वो सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए पूरी एकाग्रता वाला योग अगर नहीं है हमारा अभी भी, है ना, हम अपने आप को चेकिंग तो कर सकते हैं ना, तो बाबा कहता है बहुत काल का अभ्यास करो, आप ऐसे नहीं सोचो कि आप अंत में कर लोगे, और अति के समय की जो स्टेज हमारी होनी चाहिए उसका अभी से ही अभ्यास करेंगे। जैसे स्टूडेंट है वो परीक्षा के टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करता, परीक्षा के टाइम तो आपको आपको प्रेजेंट करना है, लेकिन प्रैक्टिस या रिहर्सल या रिवीजन कैसे करता है, वो पहले से ही करता है। तो आप भी पहले से ही, बाबा ने बता दिया है आपको पेपर क्या है, तो पहले से ही पता है कि बहुत खींचा थान करने वाली परिस्थितियां होंगी, ऐसी परिस्थितियों में ही अशरीरी बनना होगा, बहुत अपने भी पुराने संस्कार, माया भी पूरा जोर लगाएगी, ऐसे समय वो ऐसा समय होगा, है ना, हमारे भी वो संस्कार फिर से इमर्ज हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जब हम बहुत बिजी हैं, अपने चाहे काम में बिजी हैं, बुद्धि बहुत बिजी है, ऐसे समय पर प्रैक्टिस करो कि मेरी देह रूपी जो ड्रेस है वो टाइट तो नहीं है, जैसे टाइट ड्रेस को उतारने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, इतनी जल्दी नहीं उतरती है, तो ऐसे ही अगर मेरी देह रूपी ड्रेस टाइट है तो हम अशरीरी नहीं हो सकेंगे, और फिर पास होने की बजाय, जैसे स्टूडेंट ने पहले से अभ्यास नहीं किया तो वो परीक्षा में जो सफलता चाहता है वो उसे नहीं मिलेगी, तो हम भी जो नंबर चाहते हैं, हम लोग सब नंबर वन आना चाहते हैं, है ना, कोई भी राम सीता तो नहीं बनना चाहता ना, राम सीता को बाबा फेल कहते हैं, तो राम सीता तो नहीं बनना चाहते, हम सब कौन बनना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण हम बने, वो वाली सफलता हमें मिले कि हम पास विद ऑनर हो जाएं या नंबर वन हम पास हो जाएं, ऐसे बहुत काल के अभ्यास से होगा। और वो पेपर ही है कि एक सेकंड में देह से न्यारे, एक सेकंड में, एक सेकंड का ही टाइम है, इससे ज्यादा नहीं, एक सेकंड में ही क्या हो जाना है, एक बाप दूसरा ना कोई, कोई याद ना आए उस समय, हाँ कि मेरे साथ कहीं इसका तो भी कुछ ठीक ठाक हो जाए, मना होता है ना, जहां भी मोह की रग होगी उसमें बुद्धि ना जाए, ऐसा होता नहीं है। तो चाहे व्यक्ति या संपत्ति, दो में ही रग होती है मनुष्य की, और ये दोनों चीजें उस समय खींचने की कोशिश करेंगी। तो ये अभी से ही हमें अपना टेस्ट पेपर खुद लेना है कि क्या हम इसमें पास हैं, अगर एक ये व्यक्ति होते हुए भी क्या मैं टाइम पर देह से नियारा होकर एक बाबा की याद में ही अपना मन स्थित कर सकती हूँ? या इतना सब कुछ संपत्ति तो बाबा क्या कहता है, फरिश्ता कौन बनेगा जो क्या समझता है, जो क्या समझता है, जो समझता है कि सब कुछ तेरा है, जो कुछ भी मेरा मेरा का हमारा जाल बिछा हुआ है, उन सब को परिवर्तन करके हम अब ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी है माना सब कुछ बाबा का है, बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा के ऊपर सारा बोझ है। जो भी हमारी जिम्मेवारियां हैं, हमारे कार्य हैं, हमारी सेवा है, जो भी हम करते हैं, वो सब किसके ऊपर है? अभी बाबा ने वो जिम्मेवारी ली है, तो हम डबल लाइट होकर करें, क्योंकि ये जो तन है ये भी बाबा ने मुझे दिया है अभी सेवा के लिए। तन भी मेरा नहीं है, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, भक्ति में भी कहते थे, पर भक्ति में तो कहते ही थे सिर्फ। हाँ, अब बाबा ने क्या कहा, अब मैं डायरेक्ट आया हूं तो आपका तन मन धन किसका है? हम मर्जीवा हैं या नहीं है? ये कौन सा जन्म है? मर्जीवा जन्म है। तो जीते जी मरना माना, ये तन तो मेरा है ही नहीं, मैंने बाबा को दे दिया, सेवा के लिए दे दिया, अमानत है, बाबा की अमानत मेरे पास है। तो तन का भी कोई बोझ नहीं है ना, तन का बोझ होता है कोई भी, जो भी बीमारियां आ जाती हैं, जो शरीर के हिसाब किताब है, वो तो वो भी बाबा को अर्पण, बाबा जाने ये बाबा का, ठीक है, किसी की अमानत मेरे पास है तो उसको संभालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो मुझे इलाज करना है, जो भी उसके लिए मुझे विधि करनी है, वो जरूर हम करें, लेकिन जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की है। तो हम हल्के रहेंगे। और फिर धन संपत्ति भी जो मेरा मेरा हम करते हैं तो किसका है? बाबा की श्रीमद प्रमाण ही हमें यूज करना है। बाबा ने हमें विधि बताई धन को यूज करने की। तो हम खाते भी हैं तो किसके भंडारे से खाते हैं? भले ही हम कमाते हैं, हम कमा कर लाते हैं, हमारे हमारा भंडारा है, माना हमारी रसोई है, हम अपने हाथों से बनाते हैं, लेकिन फिर भी किसका भंडारा है? शिव बाबा का भंडारा है। शिव बाबा की याद में हम बनाते हैं, उसको भोग लगाकर फिर हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं, तो बाबा का है। तो जब ये स्मृति सदा रहेगी हमें, तो फिर हमारे लिए फरिश्ता बनना, डबल लाइट बनना, फिर हम किसी भी समय उड़ सकेंगे। नहीं तो फरिश्ता बनना मुश्किल लगता है। चलो योग में बैठे, विशेष खास प्रोग्राम प्रमाण बैठे, वो बात अलग है, लेकिन बाबा तो कहता है फरिश्ता बनकर ही कर्म करो, अव्यक्त स्थिति में ही रहो, व्यक्त में आओ ही मत। चलो कर्मेंद्रियों का आधार लेना है, लो, लेकिन जैसे शिव बाबा आते हैं, थोड़ा समय के लिए शरीर का आधार लिया और फिर देह से न्यारे हो गए। हम बताते ना अपनी समेटने की शक्ति में कि कछुए का स्वभाव क्या होता है, जब उसको कर्मेंद्रियों से कर्म करना है तभी बाहर आता है, नहीं तो अंदर। तो हम भी अंतर्मुखी हो जाएं, अपनी आत्मा आत्मिक स्वरूप में, अपनी अशरीरी स्थिति में या अपनी फरिश्ता स्थिति में, ये हमारी अव्यक्त स्थिति है, तो इसमें स्थित हो जाना है। और अव्यक्त स्थिति में स्थित होना माना फिर हम उस लाइट की स्थिति में पूरे विश्व की आत्माओं को सेवा करते हुए प्रकाश दे सकते हैं। बाबा फरिश्ता स्वरूप को कहता है कौन सा वाहन अंतर्वाहक शरीर, वो नाम देता है बाबा की, हमारा अंतर्वाहक शरीर है जो कहीं भी जा सकता है दुनिया में। तो हम जहां प्रकाश की जरूरत है, लेकिन उतना लाइट होंगे तब, जैसे कहा ना कितने बोझ लेकर के हम घूमते रहते हैं, और वो क्योंकि मेरा मेरा करते हैं इसलिए वो सारे बोझ हमारे साथ लगे रहते हैं, लेकिन जब हम हल्के होंगे, हल्का ही उड़ सकता है, बोझ वाला तो नीचे ही रहेगा। दुनिया में भी कौन सी चीज ऊपर उठती है जो हल्की होती है? तो फिर हम जहां आत्माओं को आवश्यकता है, जो बाबा बोलता है आज कितनी आत्माएं दुख से पुकार रही हैं, तो भगवान को पुकार रही हैं और किसको पुकार रही हैं, इष्ट देवताओं को पुकार रही हैं। तो हम भी तो निमित्त है ना बाबा के साथ, बाबा तो चलो करता ही है लेकिन हमारा भी बाबा के साथ पार्ट है अभी, तो हम भी बाबा के सहयोगी हैं, बाबा के राइट हैं। तो जहां आत्माओं को जरूरत है, दुखी आत्माएं हैं, आज कितनी जगह युद्ध चल रहे हैं, कहां भूकंप आ जाते हैं, कहां तूफान आ जाते हैं, तो जहां ज्यादा आवश्यकता है वहां हमें बिल्कुल अपना फर्ज समझकर कि यहां मुझे आत्माओं को सहयोग देना ही है, तो हम अपना समय निश्चित करें। अभी जैसे आज इंटरनेशनल योग है ना, तो हम विश्व शांति के लिए ही योग करते हैं, तो अगर हम संगठित रूप में सभी मिलकर एक शुद्ध संकल्प करते हैं उस स्थिति में, तो वो पावरफुल काम करता है। उन आत्माओं को वो अनुभव भी होता है कि हमें किसी के द्वारा वो शक्ति मिल रही है, हिम्मत मिल रही है, हमें वो उत्साह मिल रहा है, हमारी निराशा खत्म हो रही है। तो बाबा कहते हैं जैसे ओम मंडली के समय में बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप को यूज करके साक्षात्कार कराए, ऐसे ही अंत में आप बच्चों के साक्षात्कार होंगे, कंबाइंड स्वरूप के, शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप के साक्षात्कार या फरिश्ता स्वरूप के साक्षात्कार। लेकिन कब होंगे, किसके होंगे, सब तो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो स्टेज चाहिए ना। जब तक वो स्टेज नहीं है होगा क्या? हाँ, स्टेज का पर्दा भी कब खुलता है, बाबा कहता है ना पर्दा नहीं खोल सकते, कब खुलेगा, जब एक्टर तैयार होंगे, और तैयार ही नहीं है, कोई कंघी कर रहा है, कोई पाउडर लगा रहा है, कोई अपने कपड़े ठीक कर रहा है, तो क्या होगा, हंसी के पात्र बन जाएंगे ना। तो यहाँ भी जब तक हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकते। तो बाबा इसलिए कहते हैं समय आपका इंतजार करे, आप समय का इंतजार मत करो। तो हमारी वो संपन्न संपूर्ण स्थिति ब्राह्मण सो फरिश्ता, तो वो फरिश्ता स्थिति मेरी बनी है, तो मुझे वो डबल लाइट स्थिति में सदा रहना है, जो बाबा ने मुझे वो फरिश्ता स्थिति की विधि बताई है। और उस डबल लाइट स्थिति से ही, जैसे लाइट में ही साक्षात्कार होता है, अंधेरे में थोड़ी कुछ दिखता है। दुनिया में भी जो विज्ञान के साधन चलते हैं वो सब किससे चलते हैं, लाइट के आधार पर चलते हैं। लाइट चली जाए तो सब कुछ बंद है ना, अंधेरा हो जाएगा, और वैसे भी जो भी साधन भी काम कर रहे हैं सब बंद। तो यहां भी जब तक वो लाइट हमारे अंदर नहीं है, हम दुनिया को साक्षात्कार नहीं करा सकते। तो वो भी अभी से ही हमारा अभ्यास होना चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा को जैसे ही पता चला कि सूक्ष्म वतन में बाबा का स्वरूप कौन सा है, लाइट का स्वरूप है, यहां साकार में इतनी लाइट नहीं है, तो बाबा ने उस दिन से ही मेहनत करना शुरू कर दिया। तो बाबा यही कहता है कि आप भी यहां भी कर्म करते हुए हम फरिश्ता रह सकते हैं। चलो अशरीरी स्थिति का अभ्यास तो कई बार मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन फरिश्ता स्थिति का अभ्यास वो तो आकारी शरीरधारी है ना, और आने वाली जो संपर्क में आत्माएं हैं उनको भी फरिश्ता स्वरूप देखो, उनको भी साकार शरीर में मत देखो, तो आपकी दृष्टि कौन सी हो जाएगी, अलौकिक है ना। नॉर्मली हम लौकिक दृष्टि से देखते हैं है ना, और अगर देह अभिमान में है, देही अभिमानी नहीं है तो दूसरों की भी देह को ही देखते हैं फिर। वैसे तो देखना चाहिए आत्मा को है ना, रोज रोज बाबा हमें यही मेहनत कराते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आत्मिक दृष्टि नहीं बनी तो हम देह भान में ही आ जाते हैं, देह अभिमान में भी आ जाते हैं, फिर मैं कौन हूँ वो मुझे याद आता है, मैंपन कब आता है। हाँ चलो, हमारा दुनिया वाला देह अभिमान नहीं होता, कौन सा देह अभिमान होता है, मेरे गुण, मेरा ज्ञान, मेरा योग, मेरी सेवा, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी प्लानिंग बुद्धि है ना, या मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। मतलब अब मैं किस में अच्छी हूँ, ब्राह्मणों में विशेषताएं तो है ना, विशेषताओं से ही बाबा के बने हैं, उन विशेषताओं का मैपन आने लग जाता है, फिर सोचते हैं मुझे पहचानते नहीं है ना, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, मेरे को ये सेवा देते ही नहीं है, हाँ मेरा तो कहीं नाम ही नहीं आता है। मतलब उस मैंपन में चले गए तो वो भी माया का रॉयल रूप आ जाता है, जो हमारा योग लगने फिर नहीं देता, वो भी बोझ बन जाता है। और बाबा फिर यहाँ यही कहते हैं कि मेरा आया कहाँ से, किसने दिया ये सब ज्ञान, गुण, शक्तियां, सेवा, ये सब किसने सिखाया, कौन बना रहा है हमको उस लायक। तो देने वाला तो बाबा है ना, भूल जाते हैं हम दाता को, भूल जाते हैं और फिर मैंपन में आ जाते हैं, जो हमें देह अभिमान में ले आता है। तो फरिश्ता कभी भी देह रूपी अर्श पर नहीं, फर्श पर नहीं, अर्श पर रहता है। देह तो एक फर्श की तरह ना, माना धरती है, तो फरिश्ता जो है वो उससे, तभी फरिश्तों को आसमान में उड़ता हुआ दिखाते हैं। और आसमान में उड़ता हुआ क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उनके जो दो पंख हैं, वो कौन से पंख हैं, ज्ञान और योग के आधार पर वो उड़ती कला में चले जाते हैं। जितना हमारा ज्ञान और योग मजबूत होगा, उतना वो उड़ती कला की स्थिति हमारी स्टेज होगी। और अभी जो समय है वो उड़ती कला का समय है, अभी चलती कला और चढ़ती कला का समय नहीं है, उड़ती कला का समय चाहिए अभी। तो वो स्टेज का अभ्यास भी बहुत काल का हमारा चाहिए। तो बीज रूप स्थिति, शक्तिशाली याद, बीच बीच में घंटे में एक बार भी बाबा कहता है आपने कर लिया। कितनी देर लगती है परम धाम में जाकर बाबा के पास एक मिनट अपना बीज रूप अनुभव करने में, कर लिया तो वो विटामिन्स की तरह काम करता है। जैसे कमजोरी होती है तो डॉक्टर क्या देते हैं, टॉनिक देते हैं, आपको टाइम टू टाइम टॉनिक पीना होता है तब ताकत आती है। तो ये भी अभ्यास हमारे लिए टॉनिक का काम करता है कि कोई भी बीच में, इस बीच में कोई ऐसी बात आ गई जो मुझे अशांत करने वाली हो जाता है ना, क्योंकि संसार में, कलयुगी संसार में, वैसे हम संगम युगी हैं लेकिन फिर भी कोई बात से मन थोड़ा अशांत हो गया, कोई बात से मन थोड़ा उदास हो गया, हाँ, या थोड़ा दुखी हो गए, होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कोई हलचल, एक मिनट हमने ये स्थिति का अभ्यास किया और क्या हुआ, हम फिर से अपनी अनादि शक्तिशाली स्थिति में आ जाएंगे। और बाबा की भी मदद मिल जाएगी, क्योंकि बाबा को याद कर लिया तो बाबा की मदद मिलते ही हम पुनः शांति, अशांति से शांति, उदासी से खुशी में या आनंद में आ जाएंगे, दुख की स्थिति से किस में आ गए, सुख की स्थिति में, एकदम मन की स्थिति बदल जाएगी। तो लेकिन ये मेहनत तो फिर थोड़ा हमें पुरुषार्थ तो करना ही होगा ना, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के ये स्टेजेस जो बाबा हमें कहते हैं, जो पावरफुल स्टेजेस हैं, उनका अनुभव हम नहीं कर पाते, फिर हम सिर्फ साधारण योग में ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं योग नहीं करते हैं, तो अलबेलेपन वाला योग होता है, थोड़ा याद कर लिया, थोड़ा इधर उधर की बातें, थोड़ा इसकी उसकी बातें, बस योग हो गया, पूरा हो गया। तो अभी भट्टी में आए हैं तो पूरा लक्ष्य रखना है कि जो हमारी योग की पावरफुल स्टेजेस हैं, इनका हम अधिक से अधिक अनुभव करें और अपने स्थानों पर जाकर के भी फिर हम योग के ये अनुभव करते रहें, ताकि जो भी योग की सिद्धियां हैं वो हम अपने जीवन में अनुभव करें। ओम शांति।